والشمس تجری لمستقر لها, اور یہ آفتاب جو چلتا رہتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ تو اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اس ذات کا جو عزیز بھی ہے اور علیم بھی ہے. یہ اس ذات کے کام ہے, یہ وہ ذات ہے جو یہ سب کچھ کرنے کرانے والی ہے. کبھی غور کرو وہ یہ سب کچھ کر کے تمہیں کیا بتاتا ہے. اب یہاں سورج کے مستقر کی بات ہے, تو یہ مستقر کیا ہے؟ لفظی ترجمہ تو اس کا ہم پیچھے بہت جگہ دیکھ چکے ہیں, قرر سے قرار, مستقر, جائے پناہ کو کہتے ہیں. اب سورج کا مستقر کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ مستقر زمانی, یعنی زمانے کے اعتبار سے قرار ہے, یعنی وہ وقت جب سورج پورا چمک رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد پلٹ جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت ہے, کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کی حرکت رکھی ہوئی ہے اور جب قیامت آئے گی تو سورج اس وقت رک جائے گا. اور اسی طرح اس انداز کو سمجھنے کے لیے چند روایتیں بھی ہمیں ملتی ہیں. جیسے حضرت ابو ذر غفاری ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غروب آفتاب کے وقت مسجد میں تھے, تو آپ نے ان کو خطاب کر کے سوال کیا, ابو ذر کہ آپ جانتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی کا تعلیم دینے کا طریقہ کہ نیچر کو بھی ساتھ لیتے تھے. باہر واک کر رہے ہیں تو سورج کو دیکھ رہے ہیں, چاند کو دیکھ رہے ہیں, بادلوں کو دیکھ رہے ہیں اور اسی کی باتیں کر رہے ہیں. ہم چلے بھی جائیں واک کرنے تو ہمارے دنیا کے دکھڑے ہی نہیں ختم ہوتے, غم ہی سناتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے کے سنتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی سورج دکھا کے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کہ سورج کہاں جاتا ہے, تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتا. آج کا تو کوئی بچہ بھی ہوتا کہتا ہمیں پتہ ہے وہ امریکہ سے جاتا ہے تو پاکستان میں نکل جاتا ہے. سائنس نے تو بتا دیا, وہ گلوب میں دنیاوی علوم میں کمی بھی تھی, اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ اپنی عقل نہیں لگانی, اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ سورج چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ کرتا ہے. پھر آپ نے فرمایا اس آیت میں مستقر سے یہی مراد ہے کہ والشمس تجری لمستقر لها, کہ سورج جو ہے وہ اپنے مستقر پہ چلے جاتا ہے. پھر ابو ذر ہی ایک اور روایت میں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے جب مستقر لہا کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا مستقر روحا تحت العرش, اس کا مستقر عرش کے نیچے ہے. یہ صحیح بخاری کی بھی روایت ہے. اسی طرح ابن عمر سے ایک روایت میں کچھ زیادہ لفظ ہیں, کہتے ہیں کہ سورج روز تخت کے پاس پہنچ کر سجدہ کرتا ہے اور نئے دورے کی اجازت طلب کرتا ہے, یعنی ہم سے جاتا ہے تو عرش کے پاس جاتا ہے, پھر اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ آپ مجھے پھر دوبارہ نکلنے کی اجازت دیجئے, اور اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتے ہیں تو وہ اگلے دن پھر مشرق سے نکل آتا ہے, یعنی ایک سائیکل پورا ہو جاتا ہے. کہا یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کو نیا دور کرنے کی اجازت نہیں ملے گی, بلکہ حکم یہ ہوگا کہ جہاں سے آئے ہو وہیں, اس وقت توبہ کرنے والے اور ایمان لانے والے کو توبہ اور ایمان فائدہ نہیں دیں گے, کسی مبتلا گناہ کی گناہ سے اور شرک میں مبتلا شخص کی شرک سے اور کفر میں مبتلا شخص کی کفر سے توبہ قبول نہیں ہوگی. اور یہ قرب قیامت کی علامتوں میں یہ روایات آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اتنا بڑا سورج اللہ کے حکم پہ آتا اور جاتا ہے. چلیے مان لیجئے کہ یہاں سے نکلتا ہے تو دوسری طرف جاتا ہے, لیکن یہ سارا کچھ کیسے آرام سے ہو رہا ہے؟ ایک خاموش اندازہ, ایک خاموش طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو کیسے پیارے انداز سے کرتے جا رہے ہیں, اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا. ہم بڑی سے ایک چیز کو ادھر سے ادھر موو کرنا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمیں اس میں کتنی مشکل ہوتی ہے, لیکن اللہ کی ذات اتنے بڑے سورج کو گھما رہی ہے, کوئی شور, کوئی زناٹا, کوئی کسی قسم کی ہلچل ملتی ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے جو یہ سب کچھ کر کرا کے کائنات کو اتنا حسین بنا کے ہمارے سامنے پیش کرتی ہے, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں. دیکھیے اگر انسانوں کو ہی سورج کو چلانا پڑتا, پہلے تو اس کا بل ہی اتنا آتا کہ لوگ کہتے نہیں سورج نہ ہی نکلے تو اچھا, ہم افورڈ نہیں کر سکتے. آپ تو یہاں کہتے ہیں نا کہ سورج نہیں نکلتا اور نکلے تو ہم خوشیاں مناتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر سورج واقعی پیسوں کا ہوتا تو ہم شکر کرتے کہ نہیں نکلتا. یہ اللہ کی شان, اس نے کائنات کے اندر اتنی پیاری چیزیں رکھ دی اور ہمیں کہتا ہے کبھی غور کرو, سوچو تو صحیح ہے سب کچھ کیسے ہو رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, اس لفظ سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ تقدیر صرف انسانوں کی نہیں ہوتی, بے جان چیزوں کی بھی ہوتی ہے, کیونکہ تقدیر کا لفظی معنی جو ہے نا اندازہ کرنا ہے. کیسا پیارا اندازہ ہے, 19-20 کا فرق نہیں, ایک چیز ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر نہیں جاتی, کوئی कोई ये नहीं सोच सकता कि नहीं मैंने ऐसे नहीं सोचा था ऐसे, और मेरा था ख्याल था कि ऐसे नहीं होगा वैसे होगा, बिल्कुल वैसे ही हो जाता है जैसे अल्लाह ने चाहा। आप देखिए कि प्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्ट कहते हैं पेशेंट कोई जिसके बारे में की जा सके। हमें पता होता है ना कि आज सनराइज़ कितने बजे हैं, लोगों ने 100 साल बाद का भी कैलेंडर अभी बना दिया, कि आपसे कोई पूछे कि आज से 6 महीने बाद फजर की नमाज़ कितने बजे होगी, एक क्लिक लगाएं कंप्यूटर पे आपको पूरे साल की नमाज़ों का टाइम बता देगा। ये भला क्यों है? तकदीर उल अज़ीज़ अल अलीम, गालिब का अंदाज़ है। हमारे अंदाजे होते हैं कि तो पता नहीं, अंदाज़ा लगाया था 20 लोग आएंगे, आगे 50 लोग, और अंदाज़ा लगाया था 100 आएंगे मेरा ख्याल है, और आगे 20 लोग। हमारे तो अंदाजे भी इतने ख़राब है, चावल तो हमारे सही नहीं पकते अंदाज़ों की वजह से, पानी अंदाजे से डाला, वो पता चला वो चावल ही नए थे, वो ऐसा हो गया, वो मैंने चूल्हा कम डाल दिया, ज़्यादा कर दिया। हम इंसान किस बात पे अकड़ते हैं? क्या हमारी औकात है और क्या हमारी ताकत है कि हम उस ज़ात के आगे मुकाबला करें? आप सर अपने आप को सूरज की जगह पर रख के सोचें, कोई तकाबुल है? और इतना बड़ा सूरज अल अज़ीज़ अल अलीम के मुताबिक चल रहा है तो मैं क्यों नहीं चलती? मुझे अल्लाह और उसके रसूल के किए हुए अंदाजे क्यों अपने लिए अच्छे नहीं लगते? उनका बताया हुआ लाइफ स्टाइल मेरे लिए क्यों नाकाबले बर्दाश्त है? उन्होंने जो औरत की हदबंदी की, मैं उस हदबंदी के ऊपर क्यों नहीं रहती? अब देखिए कि अल्लाह ताला की ये सिफ़ात अज़ीज़ अल अलीम ये बहुत ज़्यादा शऊर दिलाने वाली हैं, कि गालिब इतना है कि पकड़ के लोगों को इधर से उधर कर दें, और सूरज इतना डरता है अल्लाह के इस गलबे से कि ना इधर टकराता है ना उधर टकराता है, और अलीम ऐसा है कि सूरज की पूरी ताकत, उसका चलना चलाना, इस सब को अल्लाह ताला पहले से जानता है। और सिर्फ सूरज ही नहीं, वल क़मर क़द्दरनाहु मनासिल हत्ता दकल अर्जुनिल क़दीम, और ज़रा चाँद को तो देखो कि हमने मुकर्रर कर दी हैं इसके लिए मंजिलें, आखिरकार हो जाता है खजूर की पुरानी शाख की मानित। और जून आराजा से बहुत, जब कोई बंदा झुक जाता है ना तो वो कैफियत है। लफ्ज़ जो उरूज है वो भी इसी से है, लफ्ज़ी माना देखिए आराजा, उरूज आराजा बुलंदी को कहते हैं, मारिज का लफ्ज़ भी इसी से है। लेकिन जब ये और जून में पहुँच जाता है तो मुराद ये है कि ये बिल्कुल झुक जाता है, जैसे कुबड़ा शख्स होता है ना जिसकी कमर झुकी हुई हो, उस तरह होता है, इतना पतला हो जाता है। इशारा है इसमें बिल्कुल आखिरी रातों के चांद की तरफ, कि इतना छोटा हो जाता है कि जैसे खजूर की एक टेढ़ी शाख होती है उतना पतला हो जाता है, खुली आंख से दिखता भी नहीं। अब यहाँ पहली बात देखिए कि कमर के साथ भी अल्लाह ताला ने कद्दर ना हो का लफ्ज़ रखा, कि सूरज की तरह चाँद की भी तकदीर है, अल्लाह ने रख दी चाँद की नसीब में कि तुमने आना ही रात को है, ये उसकी तकदीर है। कोई चूँच ना हुई कभी, ये क्या बात है भाई मैं रात को ही आऊँ, मुझे तो दिन में आना है। आज सिर्फ एक दफ़ा चांद अगर ये ज़िद कर ले हमारी सारी कायनात बिखर के रह जाए। सूरज को सुबह बुलाए वो नहीं कह रहा अल्लाह मुझे भी कभी नाइट फंक्शन में बुलाएं, मैं भी देखूँ लोग क्या करते हैं, ज़रा मैं भी नज़ारे करूँ। देखो लोग तो सारे महबूब को चांद से मिसाल देते हैं, मुझे आपने दिन में जलाल विलन बना के पेश कर दिया, सब चुप करके बैठे हुए रदी तो बिल्ला ही रब्बन। फिर दूसरी बात मनाजिल, मनाजिल मंजिल की जमा है, चांद की कितनी मंजिलें? 28 मंजिलें। कि आप देखें कि पूरा चांद इस तरह बिल्कुल आप इमेजिनेशन में लाएं ना, एक गोल प्लेट है, फिर उसका एक किनारा भूरा हुआ है, फिर एक भूरा भूरा, और बिल्कुल आखिरी कन्नी रह जाती है। आप एक रोटी को ले लें इमेजिनेशन में, पिज़्ज़ा ले लें, कोई पूरा एक पिज़्ज़ा है, फिर उसके 2 स्लाइस करें आप, फिर उसके अंदर से किनारों से उसको घटाते जाएं घटाते जाएं, 28 डेज में चांद जो है वो मुख्तलिफ मरहलों में होता हुआ फिर छुप जाता है, फिर एक आधा दिन छुप जाता है और उसके बाद दोबारा निकलता है। रोज़ाना एक मंजिल तय करता है चांद, और उसके बाद 2 रातें गायब रहकर तीसरी रात को फिर आ जाता है। फिर अरबी में हर रात के नाम भी हैं, पहले दिन का जो चांद है वो हिलाल है, या शुरू के और आखिर के जो बिल्कुल बारीक दिन है, फिर जो 3-4 से ले कर 14 से पहले पहले और 15 के बाद के जो दिन है उसको कमर कहते हैं, और बदर क्या होता है 13, 14, 15 का चांद जो बिल्कुल कंप्लीट फुल मून होता है। ये सारी चांद की मिसालें दी, अल्लाह ने चांद के घटने से क्या कहा? कि तुम भी घट रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी घट रही है, तुम सोचो तुम किस तरीके से अपने इंजाम के करीब जा रहे हो। इसी से अल्लाह सुब्हान व तआला ने सालों महीनों और दिनों का हिसाब लगवा दिया, इसी से अल्लाह तआला ने तुम्हारी इबादत के वक्त मुकर्रर किए। अगर सूरज और चांद ज़रा सी सरकशी करे तुम्हारी सारी नमाजें ज़ाया हो जाए, कज़ा हो जाए, तुम उठो अपने हिसाब में फजर पढ़ने, पता चला वो सूरज शोखी में आ गया, वो आज थोड़ा पहले ही आ गया, फजर गई आपकी, खत्म। आप रोजा रख के बैठे हुए थे कि आज 5 बजे रोजा खुल जाएगा, पता चला 5, 6, 6:30, 7, और वो क्या हुआ, वो चांद साहब तैयार हो रहे हैं, वो आए नहीं, उनका दिल ही नहीं किया आने को। कभी सोचा लशम सुयम बगी लहा, उसको तो लायक ही नहीं, उसकी तो मजाल ही नहीं, वो तो सोच भी नहीं सकता कि मैं अल्लाह सुबहाना ताला की बात को छोड़ दूं। तुम इंसान इतनी शोखियां क्यों करते हो, तुम्हें क्या हो गया, तुम कोई बहुत अछूती चीज हो, तुम बहुत बड़े हो, अल्लाह ने तुम्हें इतना कुछ दिया, सूरज चांद सितारे तुम्हारे लिए हैं। पीछे हमने पढ़ा कि रंग जो है वो सिर्फ इंसान को दिखते हैं, इसी तरह ये कायनात का हुसन जो है ये सारा इंसान को दिखता है। जो जानवर है उनको सूरज की ये सुर्खी नहीं दिखती होगी, शफक की लाली नहीं दिखती होगी, ये सब कुछ हमारे पास जानवर है, उनको ये गर्मी सर्दी का एहसास भी नहीं होता। कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इंसानों में भी ऐसे ही होता है कि हमारे अंदर तो ये बॉडी टेम्परेचर खुद बहुत मेनटेन हो जाता है ना, कुछ जानवरों को खुद करना पड़ता है। आप पढ़ के देखें, मैं कहती हूँ कि कुरान को पढ़ने के बाद कम से कम 2-3 महीने का एक साइंस का कोर्स करना चाहिए कि जिसमें आप देखें तो सही अल्लाह की ज़ात कर क्या रही है, क्या कुछ उसने आपके लिए किया। ज़ालिका तकदीरुल अज़ीज़िल अलीम, और तुम उसी के मामलात में ढीले रहते हो, तुम उसी को हल्का छोड़ते हो। कहा नहीं, ये उसकी ज़ात है जो ये सब कुछ करके तुम्हारे कामों को चलाती है। लशम्सु यम्बगी लहा अन तुद्रिकल कमर, ना सूरज की ये मजाल के पीछे से चांद को आप पकड़े, यानी चांद मौजूद था रात को, साथ ही सूरज भी आ गया, ओ मैंने सरप्राइज दिया आज। हम तो सरप्राइज भी दे दे के अपने आप को भी परेशान रखते हैं और दूसरों को भी रखते हैं। मजाल नहीं, हिलना नहीं अपनी जगह से। आप बच्चों को सुला के जरा बाहर हैं, थोड़ी देर बाद देखे आपसे पहले बाहर आके खड़े, वो क्या वजह, वो सरप्राइज दे दिया बच्चे ने। बस माएँ बेचारी खुश हो जाती हैं बच्चे को सुलाते में और बच्चे सब उठे होते हैं, ऐसा होता है ना। हम इंसान बचपन से ही आप देखिए कि किस किस्म के काम करते कराते दिखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कैसे हमें बता रहे हैं कि ना चांद आगे आता है ना सूरज, वलल लैलु साबिकुन नहार, और ना रात की ये ताकत है कि वो दिन से आगे निकल जाए, दिन का देखने के शौक में कि मैं भी तो देखूँ सूरज होता क्या, आखिर मेरे भी तो कोई जज्बात है, आखिर मेरे ऊपर इतनी पाबंदियाँ क्यों हैं, मेरे भी तो जज्बात है। आज औरत जो है वो मर्दों से आगे भागना चाहती है, सूरज नहीं यम बगी लहान तुद्रिकल कमर, लेकिन औरत मर्द से आगे भागना चाहती है और कुछ मर्द औरतों से पीछे रहना चाहते हैं। ये सब कुछ अल्लाह की ज़ात ने बता दिया कि देखो वह कुल्लुन फी फलकी यसबहून, ये सारे एक फलक में तैर रहे हैं, सारे सैारे सैारे सितारे ये सब कुछ एक किनारे पे एक जगह जा रहे हैं, तो निज़ाम चल रहा है ना, तो फिर औरतें क्यों घरों से बाहर बाहर टपकती हैं। वो सोचते हैं हम घर से बाहर नहीं जाएंगे, दुनिया का निज़ाम नहीं चलेगा। यहाँ से आप सबक लीजिए कि कायनात में हर बंदे को उसकी पोजीशन अलॉट की हुई है, वो उस पोजीशन पे रहता है, बहुत अच्छा काम चलता है तो कायनात का। जो ही ये तुद्रिकल कमर वाली बात हो जाए या साबिक नहार वाली बात हो जाए, निज़ाम बिगड़ जाएगा और ये सब कुछ इस तरह पलट जाएगा कि इंसान का सिस्टम सारा धर्म भरम होगा। इसी तरह जब औरत मर्द बन जाती है या मर्द औरत बन जाते हैं तो घरों के निज़ाम चौपट हो जाते हैं। औरत अपने मदार से निकल के मर्द के मदार में कूदी, नतीजतन मर्द को औरत बनना पड़ा, उससे औरत वाले काम करवाए गए और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझते हैं कि हम बहुत कामयाब हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने हर एक को रास्ते दिए, हर एक का वक्त है। इससे पता चलता है कि हर इंसान का एक मुकाम होता है, हर इंसान का एक रवैया होता है, उसकी एक जगह होती है, हर एक को जब उसकी जगह पर आप रखेंगे तो बात दुरुस्त होगी। अल्लाह ताला ये सब कुछ बना के क्या फरमाते हैं, वा आयतुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम, और एक निशानी इनके लिए ये भी है कि हमने सवार किया इनकी औलाद को, फिल फुल्किल मशहून, एक कश्ती में जो भरी हुई थी, कौन सी कश्ती, हजरत नूह की कश्ती जिसमें नस्ल इंसानी को सवार किया गया और हम सब के माँ बाप वहाँ मौजूद थे कि वहाँ से निकाल कर दूसरे में रखा। और ये भी मुराद है कि इंसान भरी हुई कश्तियों में अपने बच्चों के साथ सवार होते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि कभी सोचा कश्तियों को, इतनी भारी इतने वजन वाली और पानी की सतह से नीचे नहीं जाती, किसने पानियों को हुक्म दिया कि कश्ती को इससे नीचे नहीं रखना, अगर कश्ती ज़रा सा पानी के नीचे जाएगी तो डूब जाएगी। ये अल्लाह की ज़ात है कि वो कैसे एक तरफ एक फलक में यस्बा होना है। देखिए अगर कायनात का जो सोलर सिस्टम है ना, तो वो भी ऐसे ही जैसे पानी में कश्तियाँ तैर रही हैं, कश्ती का आप देखें नीचे कोई सहारा नहीं होता, पानी के ऊपर तैरती है। इसी तरह ये कायनात में जो सूरज चांद प्लूटो और जो सितारे सियारे ना, ये कशिशें सिकल के जरिए से बांधे हुए हैं। जरा सी कशिशें सिकल काम करें, सारे सियारे आपस में टकरा जाएंगे। जैसे मैग्नेटिक सिस्टम होता है ना, हर चीज एक खास एंगल पर रख के रुक जाती है। पीछे करेंगे तो निकल आएगी और आगे जाने नहीं वो देती कशिश उसको। इस कशिश सिकल को कम या ज्यादा करें ना, तो पूरी कायनात जो है ना, जाके सूरज के अंदर गिर के राख हो जाए। और शायद क़यामत ऐसी कोई आएगी, सब निज़ाम टूटेंगे। हम 30वें पारे में पढ़ते हैं ना कि वह इज़ल बिहार फुज्जिरत, कभी आता है वह इज़ल बिहार सुज्जिरत, दरियाओं में आग लग जाएगी, ज़मीन हिल जाएगी, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ध ज़िलज़ालुहा। ये सारा कुछ क्या होगा कि डिसऑर्डर्ड हो जाएगा। कायनात में भी उसी वक्त शर फैलता है जब हम अल्लाह के दिए हुए असूलों से हट के अपनी मर्जी की ज़िंदगी बसर करते हैं, रातों को जागते हैं, दिनों को सोते हैं। तो फरमाया कि कभी सोचो अल्लाह ने किस तरीके से तुम्हें एक कश्ती में सवार करके ज़िंदगी दी थी, तो आज भी वही ज़ात है जो तुम्हारे लिए ज़िंदगी के निज़ाम चलाने वाली है। फिर आगे फरमाया वखलकना लहुम मिन मिस्लिही, और हमने पैदा की उनके लिए इस कश्ती की मानिंद मा यरकबून, वो जिन पर ये सवार होते हैं, यानी वो कोई आखिरी कश्ती नहीं थी, आज उसके तरह के बहरी जहाज़, गाड़ियाँ, रेलें, ट्रेनें, रॉकेट्स और क्या कुछ पैदा नहीं कर दिया कि तुम इन सब चीज़ों को देखो और याद करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कितनी नेमतें बनाई। सिर्फ आप देखिए कि समंदर ही सरकशी पे आ जाए, हर जहाज़ जो है वो डूब के रख हो जाए। ये अल्लाह की ज़ात है ना। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जिसमें तुम दाखिल होते हो ये सब कुछ होगा। अभी तुम्हें नहीं पता, इसमें इशारतन हवाई जहाज़ का जिक्र कर दिया, तुम्हें आज नहीं पता किस चीज़ के अंदर तुम जाओगे, लेकिन एक वक्त आएगा कि मिम मिसली ही, इसी जैसी और चीज़ें भी अल्लाह पैदा करेगा कि आज जो है उसी पे शौक ना रखो। तो खलक ना लहुम मिम मिसली ही में फ्यूचर की इन्वेंशन थी, जिसमें आज कुछ हो गई और कल जो कुछ होने वाला है वो आपको आज पता ही नहीं। पता लग जाए तो आप कहेंगे हाय अल्लाह तूने हमें इतनी जल्दी क्यों पैदा किया, हम थोड़ा आगे जाते। कल किसी ने एक ईमेल भेजा, उसमें जो लेटेस्ट जहाज़ बन रहे हैं वो दिखाए, क्या कोई 5-स्टार होटल होगा जो उसके लॉन्जेस होंगे वो अब जहाज़ों के अंदर बन रहे हैं, और वहाँ भी शराब की बोतलें और गैम्बलिंग के सारे निज़ाम मौजूद हैं। अब अगली दौर में जितने जहाज़ बन रहे हैं ना, वो लग्जरियस जहाज़ बन रहे हैं। अगर आज एक आम जहाज़ में 300 लोग हैं, तो मेरा ख्याल है जिस किस्म का वो जहाज़ों का सेटअप है, या तो जहाज़ बड़े करेंगे या शायद उसमें 20-25-30 सीटें होंगी। और लेट जाओ, बैठ जाओ, टेढ़े हो जाओ, उल्टे हो जाओ, गर्दन सीधी कर लो, टांग ऊपर कर लो, आंखें इधर कर लो, सारे इंतज़ाम मौजूद हैं। चल लो, फिर लो, सो लो, खा लो, पार्टियाँ कर लो, मीटिंग्स कर लो, ये सब कुछ उसमें रखा हुआ है। कभी इंसान गौर नहीं करता कहाँ जा रहा है इंसान। ज़रूरत की चीज़ों को जब भी तईश की चीज़ बना लिया जाता है, तो नेमत जो है वो इंसान के लिए वबाल बन जाती है। जब लोग अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को मिस यूज़ करते हैं ना, तो अल्लाह सुब्हान तआला सब कुछ उनसे छीन लेते हैं। वइन नशनुग़रिक़हुम फला सरीख लहुम, और अगर हम चाहें तो इनको गर्क कर दें फिर कोई इनकी फरियाद सुनने वाला ना हो। वला हुम युनक़ज़ून, और ना उनको डूबने से बचाया जाएगा। जाओ फिर, जब जहाज़ डूबते हैं फिर चीखा करो, फिर टाइटैनिक वालों की आवाज़ें सुनो या किसी और कश्ती के डूबने की सुनो, फिर कोई इनकी आवाज़ें नहीं सुन सकता, किसी को नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। देखिए कि ज़मीन पे कोई एक्सीडेंट होता है तो कोई बच ही जाता है, कोई उम्मीद है। जो समंदर में डूबा या फिज़ाओं में जहाज़ क्रैश हुआ, उसके तो फला सरीख लहु, कभी भी किसी जहाज़ के क्रैश होने का तसव्वुर ज़हन में लाए। कभी मैं सोचती हूँ कि क्या बीतती होगी उस वक़्त जब वो जहाज़ हिलता है और वो फेंटे जाते होंगे अंदर, और चीखें और शराब, ये तो कोई जानता ही नहीं है ना क्या होता है, क्योंकि उनमें से कभी कमी को बचा। लेकिन आप इमेजिन तो करें ज़रा कि आग फिर लगती, फिर पूरा जहाज़ जलता है, फिर पड़हच्चे उड़ते हैं उसके, फिर इंसानों के जिस्मों पे प्लास्टिक की बेल्टें लगी होती हैं, कपड़े ऐसे होते हैं, वो सब इंसान के साथ चिपकती होंगी ना, कैसे इंसान चीखता होगा। आप जितना मर्जी बाद में उसके कॉकपिट को ढूंढें और उसके वो ब्लैक बॉक्स ढूंढें, क्या थी वजह थी, कोशिशें करते रहते हैं, कभी कुछ फ़ायदा नहीं होता। फरमा वइन नशनुग़रिक़हुम फला सरीख लहुम, सरीख सराह से चीख को कहते हैं ना, तो सरीख फिर फ़ाइल के वजन पे, यानी उनकी आवाज़ सुनने वाला, उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं रहता। अल्लाह जिसको पकड़ ले उसको कौन छोड़ेगा। वला हुम युनक़ज़ून, और ना उनको बचाया जा सकता है डूबने से, मरने से, जलने से। ये अल्लाह की ज़ात है जो इंसान की सारी चीज़ों का इंतज़ाम करके उसको नेमतों के तौर पे इस्तेमाल करने की दावत देती है। आज बड़ी कश्तियाँ बना के ये समझते हो कि बड़े मजबूत जहाज बना लिए, आज हमने इसमें बरकी आलात लगा लिए, हम ये कर सकते, हम वो कर सकते, हमारा सेटेलाइट पर रबता है और हम इस तरह बचा लेंगे। आप सिर्फ एक जहाज को देखें, मैंने एक ट्रेवल जब शोर से किया तो जिस शिप पे हम सवार थे मैंने गिनी गिनती रहती थी जब भी जिधर जाती थी, मेरा ख्याल है कि 15 से 20 उसमें कश्तियां हैं जो ऊपर सिर्फ स्टोरेज पे रखी होती हैं। मैंने कहा ये क्यों है, तो मुझे बताया गया कि अगर खुदा ना हासा कभी जहाज़ डूबने लगे तो फौरन वो इन कश्तियों को पानी में छोड़ते हैं और जितने लोग होते हैं उनको उसमें मूव किया जाता है। और यकीन करें कि एक जहाज़ के अंदर लीस्ट जो मैंने गिनी थी शायद 15 से 20 के करीब छोटी बड़ी कश्तियाँ थी, आम साइज़ की कोई 10-15 थी, फिर कोई दो दो लोगों की थी, कोई गोल थी, कोई कुछ थी। तो ये सब कुछ वो क्यों इंतज़ाम किए हुए? मैंने कहा कभी आज तक इस जहाज़ की इस्तेमाल हुई? कहा नहीं हुई। कब से बना हुआ? जंग लगा होगा और उसकी मेंटेनेंस का कितना खर्चा, और वो सिर्फ कश्तियाँ निकाल दें तो उसकी स्टोरेज जो वो डबल हो जाए। लेकिन इंसान इतना डरता है कि नहीं, कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना, डूब ना जाए। लेकिन मैं सोचती जब जहाज़ डूबते होंगे तो ये कश्तियाँ भी डूब जाती, किसको मौका मिलता होगा कि इन कश्तियों को फेंकें पानी में और लोग जाएँ? वला हम युनकज़ून, जिसको अल्लाह डुबो दे वो कहाँ बाहर आएगा। अल्लाह ताला के आगे बंदे की हैसियत एक तिनके की है, तूफानों में एक तिनका जिस तरह हिलता है इसी तरह गहरे समंदरों में कश्तियाँ भी होती हैं। लेकिन अल्लाह की ज़ात ऐसे वक्तों में लोगों को दावत देती है कि देखो इल्ला रहमतम मिन्ना, ये हमारी रहमत है, एक कोई बच जाए इन हादसात में, कोई इन चीज़ों से सबक ले ले, कश्तियों में डूबने से कोई बचा ले, ये अल्लाह की रहमत है। लेकिन व मतान इलाहीन, फ़ायदा उठाना है कुछ वक्त तक। आज इस समंदर के तूफान से बच भी गए तो क्या बचे हुए हो? इधर से निकलोगे, हो सकता है खुशकी पे पाँव रखते ही तुम्हारा पाँव मुड़े और तुम्हारा जाने का वक्त आ जाए। आज एक मौत के सबब से बच गए हो, कल फिर मौत आ जाएगी, किसको ज़रूरत है? नहीं क्या होगा, कोई ऐसे बच सकता है? एक समंदर में नहीं डूबे दूसरों में डुबो दिया जाएगा। कुछ दिन मज़े ले लो, कुछ फ़ायदा ले लो। अल्लाह सुब्हान तआला बंदे को कुछ अरसे गौर करने की तौफीक देते हैं कि कर लो, क्या फ़ायदा होगा फिर इसके बाद इंसान को कि इंसान गौर करे। आप देखिए कि ये जितनी भी आयतें हमने पढ़ी इस सब के अंदर हमें एक ही पैगाम मिला ना कि अल्लाह की कदर पहचानो, देखो उसने तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत निज़ाम किया हुआ है। अल्लाह की रहमतों पर गौर करो तो सरकशी छुट जाएगी, तफक्कुर करो, तवाज़ो इख्तियार करो, अपने रब से उम्मीदों का रिश्ता जोड़ो, उसने तुम्हें बहुत कुछ दिया हुआ है, वो तुम्हारे साथ मेहरबान है। अगर वो जालिम रब होता तो कभी समंदरों के ऊपर तुम्हारी कश्तियों को चलने ना देता और फिजाओं में तैरते हुए जहाज़ों को पहले ही उसकी ट्रायल पे वो गिरा के रख देता। तो तुम भी तो उसकी पहचानो, तुम भी तो उसको मानो, तुम भी तो देखो कि उसने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। अपने दिलों को अल्लाह के लिए नरम करने की ज़रूरत है, अल्लाह की कदर की ज़रूरत है, और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين.